त्रिशा के हाथों में इस समय डाइवोर्स पेपर्स थे और उसके ऊपर निर्भय के साइन थे। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी आंखों से खुशी के आंसू झलक रहे थे और उसे खुश देखकर अनंत भी बहुत खुश हो रहा था। उसने त्रिशा से कहा, अब तुम आज़ाद हो अपनी ज़िंदगी में, अब कोई भी नहीं है जो तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता है। त्रिशा और मुस्कुराने लगी और हाँ में सर हिलाती है। उसकी खुशी से आंसू निकल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसकी मुस्कुराहट कम हो जाती है और वो हैरानी से अनंत को देखने लगती है। उसके चेहरे पर उदासी थी, पर वो उदास होते हुए अनंत से कहती है, पर क्या फ़ायदा इन सब का? अगर निर्भय ने डाइवोर्स भी दिया है तो कहाँ जाऊँगी मैं? क्या करूँगी? किसके पास रहूँगी? मेरा तो कोई है भी नहीं। मेरे घर वाले मुझे अपना नहीं रहे और अब तो मेरे पास और कोई सहारा भी नहीं है। अनंत त्रिशा के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और किसने कहा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है? तुम्हारे पास तुम्हारा बेटा है और निर्भय ने अपने दो बंगले और तीन कंपनियां उसके नाम की है। प्रॉपर्टी के नाम पर तुम्हारे पास बहुत कुछ है, तुम चाहो तो वहां जा सकती हो। पर त्रिशा ने जल्दी से ना में सर हिलाते हुए कहा, नहीं, मुझे निर्भय से कुछ भी नहीं चाहिए। ये सारी प्रॉपर्टी तुम उसे वापस कर दो। मैं अपने बेटे के पास उसकी कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रखना चाहती हूँ। मेरे बेटे के पास जो भी होगा वो उसका खुद का होगा, किसी की खैरात नहीं होगी। मुझे नहीं चाहिए उसके नाम का कुछ भी। अनंत के चेहरे पर मुस्कान तो आ गई थी। उसने कहा, ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं प्रॉपर्टी के पेपर निर्भय के पास वापस भेज दूंगा, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ, जिंदगी में कोई भी परिस्थिति हो, अब मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। त्रिशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है, पर इसके अलावा अनंत को कुछ और याद आता है और वो त्रिशा से कहता है, क्या तुम मुझे थोड़ा वक्त और दे सकती हो? त्रिशा हैरान हो जाती है और अनंत को देखकर कहने लगती है, वक्त किस लिए? कहीं तुम्हें अपने फैसले पर? इससे पहले त्रिशा आगे कुछ कह पाती, अनंत जल्दी से कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अपने फैसले को नहीं बदलने वाला हूं, लेकिन मेरी वजह से एक जिंदगी खराब हुई है और जब तक वो सही नहीं हो जाती है मेरे सीने पर एक बोझ रहेगा। क्या तुम मुझे थोड़ा और वक्त दे सकती हो ताकि अनजाने में मुझसे जो गलती हो गई है मैं उसे सुधार सकूं? क्या तुम मेरा थोड़ा और इंतजार कर सकती हो? अनंत की बात सुनकर त्रिशा के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, जब तुम मेरा इतने सालों तक इंतजार कर सकते हो तो क्या मैं तुम्हारा थोड़ा सा इंतजार नहीं कर सकती हूँ? मुझे तुम्हारा इंतजार रहेगा। अनंत के चेहरे पर एक सुकून की मुस्कान आ जाती है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी कल्पना शायद अनंत ने भी नहीं की थी। त्रिशा अनंत के गले लग जाती है और वो उसके सीने से लिपट जाती है। अनंत के हाथ हवा में थे और उसके चेहरे पर खुशी की चमक थी, लेकिन उसने त्रिशा को वापस गले नहीं लगाया। उसके चेहरे की जो मुस्कान थी वही बता रही थी कि वो इस वक्त कितना खुश है। लेकिन वही दूसरे कमरे की खिड़की से झांकता हुआ व्योम, त्रिशा का बेटा, गुस्से भरी निगाहों से अनंत और त्रिशा को देख रहा था और इस वक्त उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रखा था। महल अपने कमरे में बैठी भूमि के हाथों में इस वक्त एक पैकेट था और उसमें एक सुंदर सा लहंगे का सेट था। भूमि के चेहरे से मुस्कान जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, क्योंकि शादी के बाद ये पहली बार कुछ ऐसा था जो उसे आकाश ने दिलवाया था। उसके चेहरे की चमक ही बता रही थी कि वो इस वक्त कितनी खुश है। भूमि वहां से लहंगा लेती है और उसे ले जाकर अलमारी में रख देती है, क्योंकि उसने सोचा था यही लहंगा वो तीज के त्योहार पर पहनेगी। भूमि ड्रेसिंग के सामने आती है और अपने बाल सही करने लगती है, तभी उसकी नजर अपने गले में पड़े हुए उस पेंडेंट पर पड़ जाती है जो उसे आकाश ने वेडिंग गिफ्ट के रूप में दिया था। वो उस पेंडेंट को धीरे से छूती है और उसके दिल में एक अजीब सी हलचल होने लगती है। उसके पेट में गुदगुदी होने लगती है और चेहरे पर एक लाली बिखर आती है। वो शर्माकर अपनी पलके नीचे झुका लेती है और शर्माते हुए कहने लगती है, तो आप इतने भी बुरे नहीं हैं? देखा जाए तो आप बुरे बिल्कुल भी नहीं हैं। वो तो आपको किसी को अपना अच्छा साइड दिखाना नहीं है, इसलिए लोग आपको बुरा समझ लेते हैं। तो आपका ये अच्छा साइड सिर्फ मेरे लिए है, क्या कहते हैं आप मुझे? हाँ वाइफी, अगर मैं आपकी वाइफ हूँ तो आप ही तो मेरे हस्बैंड हैं। तो मिस्टर हस्बैंड, जो एहसास मेरे दिल में आपके लिए हो रहा है ना, ये बहुत अलग है और मुझे ये अलग सा एहसास बहुत अच्छा लग रहा है।
अचानक से भूमि की नजरें खुद की नजरों से टकराती है। वो आईने में खुद के चेहरे को देखकर ही शर्मा जाती है और अपना चेहरा अपने दोनों हाथों में छुपा लेती है। इस बात से अनजान की दरवाजे के पास खड़ा हुआ आकाश उसकी हर एक हरकत नोट कर रहा था। उसने भूमि की बात सुन ली और इसी के साथ उसके चेहरे पर एक डबल स्माइल आ जाती है। वो अंदर आने को हो रहा था, लेकिन अब उसने अपने कदम वापस बाहर की तरफ कर लिए। वो वहां से स्टडी रूम की तरफ जाता है और स्टडी रूम के चेयर पर बैठकर अपने हाथों में पेपरवेट घुमाते हुए भूमि की बातों को सोचने लगता है। उसके चेहरे की डेविल स्माइल गहरी हो गई थी और वो भूमि को याद करते हुए कहता है, तो अपने लिए एहसास मैंने तुम्हारे दिल में जगह ही दिए है वाइफी। चलो अच्छी बात है, जितनी जल्दी ये काम खत्म हो उतना अच्छा। अब मेरा दूसरा दाव चलने का समय आ गया है, जिससे तुम्हें ये एहसास होगा कि तुम्हारा ये हस्बैंड उतना भी अच्छा नहीं है जितना तुमने उसे समझ रखा है। वैसे देखा जाए तो तुम्हारी नजरों में मुझे अच्छा बनने का कोई शौक नहीं है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने के लिए मुझे तुम्हें अपने लेवल तक लाना होगा। और एक बार तुम्हें ऊंचाइयों पर लाकर जब नीचे गिराऊंगा ना, तब आएगा खेल में असली मजा। शाम के वक्त धूमी नीचे आती है तो देखती है कि अरुणिमा और जानवी पहले से ही सोफे पर बैठे हुए थे। जानवी ने भूमि से कहा, भूमि तुम आ गई, आओ बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भूमि उनके पास बैठती है तो जानवी कहती है, भूमि तुम्हारा पहला तीज है तो तुम्हें पता है तीज में क्या क्या करते हैं? भूमि ने नामे सर हिलाते हुए कहा, नहीं चाची, मुझे तो कुछ भी नहीं पता है कि तीज का त्योहार कैसे होता है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर मैंने कुछ गलती कर दी तो। भूमि की बात सुनकर अरुणिमा और जानवी दोनों मुस्कुराते हैं। अरुणिमा कहती है, अरे इसमें डरने वाली कौन सी बात है, तीज का त्योहार इतना भी भारी नहीं होता है, लेकिन पहली बार थोड़ा सा लगता है कि बहुत कठिन व्रत है, पर ऐसा होगा नहीं। सुनो, तुम्हें निर्जला उपवास रखना होगा और खुद को दुल्हन की तरह तैयार करना होगा। इस बीच तुम्हें केवल महादेव और पार्वती जी का ही ध्यान करना होगा और पूरी रात जागकर महादेव की पूजा करनी होगी। लेकिन ये पूजा तुम अकेले नहीं करोगी, तुम्हारे साथ इस पूजा में आकाश भी बैठेगा। मैं चाहती हूँ तुम दोनों को शिव पार्वती का आशीर्वाद एक साथ मिले, तुम दोनों की जोड़ी भी उनकी तरह एक उदाहरण बने। पूरी रात व्रत करने के बाद और पूजा करने के बाद अगली सुबह जब तीज का उपवास खोलोगी तो तुम्हें जल आकाश ही पिलाएगा।
अरुणिमा की बात सुनकर भूमि को बहुत अच्छा लग रहा था, पहली बार वो किसी रसम में जुड़ रही थी। तीज का त्योहार क्या होता है ये सब उसने सिर्फ अपने सामने देखा था, पर कभी उनमें शामिल नहीं हुई थी। ये पहली बार था जब वो किसी पूजा में शामिल हो रही थी और उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन आकाश भी उसके साथ पूरी रात पूजा में बैठेगा ये सोचकर ही उसकी हालत खराब हो गई थी। महादेव का तो पता नहीं, लेकिन आकाश तांडव करने पर आता है तो अच्छे अच्छे को महादेव के दर्शन हो जाते हैं। उसका रौंद्र रूप याद करते हुए भूमि के चेहरे पर हंसी आ जाती है और उसे हंसता हुआ देख अरुणिमा के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। यही तो वो चाहती थी, भूमि की जिंदगी में केवल मुस्कुराहट हो। जयपुर एयरपोर्ट। एक फ्लाइट अभी अभी एयरपोर्ट पर लैंड हुई थी और टर्मिनल से होते हुए एग्जिट की तरफ जेनी अपने लगेज के साथ आती है। उसकी आंखों में सनग्लासेस थे। वो एयरपोर्ट के बाहर कदम रखती है और अपने सनग्लासेस को उतारते हुए पूरे शहर को देखकर कहती है, मैं तुम्हें लेने आ गई हूँ स्काई।